Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन।
बेंचमार्क इंडस्ट्रीज टैंक ओवर 1%, सेंसेक्स प्लंजेस 793 पॉइंट्स, निफ्टी एंड्स बिलो 22,550। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 4.85% इन मार्च, फूड इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू 8.52%। एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज फॉर द सेवंथ स्ट्रेट वीक, जंप $2.3 बिलियन टू हिट अ फ्रेश पीक ऑफ $648.56 बिलियन।
आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स 793 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,550 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ। मार्च के दौरान खुदरा महंगाई दर घटकर 4.85% दर्ज हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सातवें सप्ताह बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर $648.56 करोड़ पर दर्ज हुआ। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज बिकवाली का दबाव रहा। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती में देरी और मध्य एशिया में बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों में तेजी से बाजार में गिरावट रही। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.1% की गिरावट से 793 अंक लुढ़क कर 74,245 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% के नुकसान से 234 अंक गिरकर 22,519 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट रही, वहीं बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% का नुकसान दर्ज हुआ।
बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी कंक्लूडेड टुडे सेशन विद लॉसेस एक्सीडिंग 1% एट्रिब्यूटेड टू अ ब्रॉड बेस सेल ऑफ। इंडियन मार्केट्स कंसोलिडेटेड अमिड्स वरीज ओवर डिलेड यूएस रेट कट्स, एस्केलेटिंग वेस्ट एशिया टेंशन्स ड्राइविंग ऑयल प्राइसेस अप एंड सब्ड्यूड क्वार्टर फोर अर्निंग्स प्रोजेक्शंस। BSE Sensex plunged 793 points, 1.06%, to close at 74,245. Nifty 50 declined 234 points, or 1.03%, to settle at 22,519. From the Sensex basket, Sun Pharma, Maruti, Power Grid, Titan and JSW Steel were the major laggards. Tata Motors, Tata Consultancy Services, TCS and Nestle were the gainers. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.5% and the small-cap index fell 0.06%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, consumer durables declined 1.39%, oil and gas fell 1.28% and FMCG cracked 1.10%.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.42 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 105.8 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।
एंड इन द अर्निंग्स न्यूज नाउ, कंट्रीज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी TCS has reported a 9.1% growth in its March quarter net profit at 12,434 crore rupees. The Tata Group company's post-tax profit during the January to March period last year stood at 11,392 crore rupees. In the fiscal year 2023-24, the company's net profit grew 9% to 45,908 crore rupees as per an exchange filing. In the March quarter, its revenue grew 3.5% to 61,237 crore rupees year on year. Puneet, bellwether stock TCS, impressive earnings, about 9% net profit growth. If you look at it on a year to year basis, that has not really compelled the market to go up. We saw profit booking today. In fact, the market fell by almost 800 points. So what's the backstory behind this fall in the market today?
So, Arjun, as you mentioned earlier in the news, the macro environment for equities worldwide is becoming worse. Of course, in the U.S., there's a setback in terms of expectations vis-a-vis the rate cuts by the U.S. Federal Reserve. Earlier, there were, at the beginning of the year, markets expected Fed to cut rates by March. Then those expectations were recalibrated to June. And now I think the markets will be pretty happy if we get one or two rate cuts in the current year. The reason is that the inflation is still very high in USA. It's running pretty hot. And the Fed is likely to keep a tight policy in place at least for next few months. Along with it, we have the geopolitical situation worldwide, which is worsening. We have tensions in Middle East, which has very serious implications for oil, because crude oil, if you notice, is already the Brent crude, which is important for countries like India, is already at around $95 to a barrel, which is I think a critical level. And if it goes any higher, in case there are any disruptions in supply chains or in supplies from Middle East, then I think we will see significant cost to the economy. So overall, the macro environment is not good. On top of it, we have a situation where the foreign investors, FIIs, which have been major players in the Indian market, they are also recalibrating this.
Well, they were net sellers, 8,000 crore rupees today in the equity market. DIIs, the domestic institutional investors, they covered. They were the net buyers to the tune of 6,341 crore rupees. So we're looking at mutual funds, insurance companies, so, really buying into the market.
So to that extent, I think domestic investors were the saving grace for markets today. But in case this heavy selling by FIIs, it persists, then I think the markets will crack further. So all in all, I think the risk-reward ratio right now is not favorable. The risks are higher in the market and rewards are fewer. And that's why I think the markets kind of took the money off the table.
लेकिन पुनीत, अगर मोटे तौर पे बाजार के आंकड़ों को हम देखें तो अभी भी जो सेंसेक्स का जो स्तर है, चाहे निफ्टी का जो स्तर है, वो बहुत उत्साह जगाता है. अगर हम कंपनी जगत के नतीजों को बारे में बात करें, जैसा कि अभी अर्जुन ने बताया, टीसीएस के नतीजे आमतौर पर यह माना जा रहा था, क्योंकि विदेशी बाजारों से जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनको बहुत इस समय प्रोत्साहन या उनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा, उनके नतीजे शायद कुछ चौंका सकते थे. उसके बावजूद अगर टीसीएस के इतने अच्छे नतीजे आते हैं तो क्या माना जाए, चौथी तिमाही में अगर हम नतीजों के दौर में जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या हमें कुछ बहुत बेहद उत्साहजनक नतीजे मिल सकते हैं जो बाजार को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं?
देखिए अर्जुन, ये बात सही है आपकी कि जो भारतीय बाजार डोमेस्टिक ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है, और टीसीएस के नतीजों में भी वो मैसेज आज हमें मिला है. टीसीएस की अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ देखें तो करीब सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट में है, लेकिन जो उनका इंडियन बिजनेस है, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, वो 38% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर. जबकि हम मानते थे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, ये ज्यादातर यूएसए या यूरोप से बिजनेस आता है, हम देखेंगे 38% ग्रोथ आई है इंडियन बिजनेस में. तो क्लियरली जो भारत की अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है, और मुझे लगता है कि वही एक हमें एक प्रकार का सेफ्टी नेट वैल्यूएशन में दे रही है. लेकिन देखिए आज की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत जो है दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यदि विश्व के बाजारों में या विश्व की अर्थव्यवस्था में हम डिस्ट्रप्शन देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उससे बचे रहेंगे. वो कुशन हमारे लिए होगा, कुछ हम फॉल हमारा कम होगा, लेकिन वो जो प्रेशर है जिसे कहते हैं मार्केट के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर, वो जरूर आएगा.
अच्छा, और इसके साथ साथ अगर अब बाजार के जो मैक्रो नंबर्स की हम बात करें, जिसपे भी अर्जुन ने बताया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स को अगर देखते हैं, तकरीबन 1.5% वहां पे आज गिरावट है. मेटल स्टॉक्स में भी आज थोड़ी सी गिरावट है, हालांकि मेटल इंडेक्स की अगर स्टॉक्स की बात करें तो काफी उस पर भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे. क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहे हैं, या तकनीकी सुधार हो रहा है, या कहीं ना कहीं छोटे तौर पे ही सही कुछ मुनाफा वसूली हो रही है, किस तरह से आंकेंगे इसको?
देखिए अभी हाल में हमने देखा था कि जो मेटल इंडेक्स, मेटल शेयर्स थे या मेटल की कीमतें थी, उसमें उछाल आया था लंबे दौर में कुछ सुस्ती के बाद. उसका कारण यह था कि चाइना में कुछ रिवाइवल की उम्मीद है, चाइना में थोड़ी इकोनॉमी पिकअप करी है, वहां डिमांड पिकअप करी है, तो वहां थोड़ा उछाल आया. लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं. ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर इकोनॉमी में झटका आता है या वहां पर थोड़ी जैसे कहते हैं डिस्ट्रप्शन आती है, जैसे हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी चिंताजनक है, तो डेफिनेटली सारे ही बाजारों में उसका असर हम देखेंगे. तो मुझे लगता है कि आज जो थोड़ा पुल बैक आया, कैपिटल गुड्स की आपने बात करी, देखिए केपेक्स जो अभी तक सरकार के खास बात रही है भारत में, कुछ आंकड़े हैं मैं बाद में डिटेल में दे सकता हूं, कि हम जो गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, सरकार की इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत अच्छी रही है। रेलवे में अगर हम देखें तो करीब करीब 7 से 8 गुना वो पिछले 6-7 वर्षों में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो अभी तक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो सरकार ने बहुत किया है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर केपेक्स अभी पिकअप नहीं करी है। तो वो गैप है, और यदि आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर केपेक्स पिकअप नहीं करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पिकअप नहीं करता है, तो वहां मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन आएगा। और वही कारण है आज आप देखें तो जो कैपिटल गुड्स इंडेक्स है, जो मशीनरी जो सेक्टर है, वहां पर हमने स्लो डाउन देखा है।
Trend towards carrying out revenue expenditures versus capital expenditures, and invariably that has an impact not just short term but medium to long term as well. Metal commodities prices have come down. Is that a reason why we are seeing a slight fall in the metal index, especially their stocks right now in the market?
So Arjun, there was a slight pullback in prices.
But not precious metals.
Not precious metals. That we'll discuss later. Because that is another story, completely different story. However, I think the industrial metals, so to say, the copper, aluminium, steel, etc. So these prices have gone up very substantially in the last few weeks because of revival in China. And today, of course, there was some pullback. There was selling across the board, except, of course, in precious metals. And I think the market was merely taking money off the table because interest rates in USA are likely to remain higher. So I think investors were just being cautious and taking some money off the table, booking some profits. Let's see. I'm not sure whether this trend will continue or not. But right now, I think investors are taking a cautious stance.
Puneet, अगर सेंसेक्स और निफ्टी की ही बात करते हैं, मोटे तौर पे 74,000 से ऊपर है भी सेंसेक्स, निफ्टी 22,500 के आसपास। अगर मैं थोड़ा सा मध्यम दौर की बात करूं, तो जून में जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते, आपको क्या लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड मोड में ही रहेगा? कभी हमको थोड़ी सी ऊंचाई और कभी वो, चाहे बीच में कंपनी जगत के भीतर कितने ही अच्छे नतीजे क्यों ना आ जाएं, या कंपनी जगत के नतीजे बाजार को एक और उछाल देने में सक्षम हो पाएंगे?
अमित, देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी जगत के नतीजे अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में, लेकिन कुछ हद तक बाजार ने उसकी उम्मीद ऑलरेडी बना रखी है और वो प्राइसेज में ऑलरेडी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो और बहुत ज्यादा यहां से चौंकाने वाले रिजल्ट है ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं, बाकी ज्यादातर सेक्टर्स में हम एक पॉजिटिव ग्रोथ देखेंगे, लेकिन कोई बहुत चौंकाने वाले नतीजे शायद नहीं होंगे। जैसा आपने कहा कि जो इलेक्शन तक अगले 2 महीने एक गर्मी का माहौल रहेगा बाजारों में, तो उसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा देखते हैं हम। कभी ऐसा देखते हैं कि कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और डोमेस्टिक बाइंग होती है, तो बाजार तेजी से बढ़ सकता है, गिर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतार चढ़ाव बहुत होंगे बाजारों में आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। बड़ी कोई तेजी यहां से बन सके ऐसा मुझे नहीं लगता। गिरावट का भी कोई डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल अगर कोई बहुत ज्यादा क्राइसिस हो तो डेफिनेटली बाजारों में उसका असर,
मतलब मौसम की गर्माहट का असर बाजार में रहेगा बट सीमित मात्रा में।
बिल्कुल, मुझे लगता है। और ज्यादातर उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की आशंका है।
जी, नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मंदी का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 1%, और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% की गिरावट से नजर आया। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.3% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्केई में 0.2% की मामूली बढ़त भी दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती रही। कारोबार के दौरान लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.7% से 1.2% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
What's the latest on Japan? If you look at the US dollar index right now, it's at 105, which means at the exchange rate, you're paying 155 yen to each dollar, which shows that the yen is actually depreciating. It's devaluing against the US dollar. The Bank of Japan has taken a decision in terms of raising the repo rate marginally. So what's the news as far as Japan is concerned? Because we are now competing with Japan for third place, I believe, in the global economic rankings.
And India hopes to overtake Japan, I think, next 2 to 3 years as the world's third largest economy. So clearly, Japanese economy is going through a difficult phase in terms of... See, earlier the Bank of Japan was following a policy in spite of the world following some kind of a...
There's a technical recession in Japan right now.
Absolutely. And so the yen... While the Japanese stock market is obviously at 30-year high, 35 years high, but the fact is that Japanese currency has been weakening significantly. You said 155 yen to the dollar. which weakens to some extent the domestic spending power. It reduces the ability, purchasing power for domestic Japanese investors. However, Japanese exports have been picking up lately. So I think we are going through a very difficult phase where a very entrenched policy of monetary easing that has been reversed. So Japan is not electing to increase or raise interest rates. I think so. It's going to take some time. So I don't think Japanese economy is going to expand significantly going forward. But hopefully they will come out of this technical recession that they faced in the last 6 months, and they keep growing steadily. On the contrary, of course, like you mentioned earlier, India is growing at 7-8% annually, and I'm quite confident that India will overtake Japan as the world's third largest economy in the next 3 years.
What about the FTSE? It's gone up by 1.2%. The reason I'm asking is because London's FTSE and India and the UK, our traditional colonial masters, are now looking to get into a free trade agreement with India. Now, they're also in competition when it comes to size of the economy in terms of GDP, and of course India will be clearly overtaking them as well. But how they're dependent upon us on a free trade agreement, which is, you know, favorable to them. How do you see this relationship right now?
So when you put it in context of UK being the old colonial masters of India, I think that's really in the past. India overtook recently UK as the world's fourth largest economy. And clearly, I think UK has more to benefit from India in terms of business, in terms of economic growth, than India really looks forward to getting those benefits.
Especially after they Brexited. I mean, they left the European Union. Now they're looking for partners, trading partners.
Absolutely. So they really need us in a sense. UK also had this technical recession in the last two quarters, and they're trying to come out of that recession, and hopefully they will, because we do want UK economy like in UK to grow, keep growing. But I think those equations have changed a lot significantly. India is demanding much more market access. They also want access to Indian markets. We also want access to the financial markets.
They wanted refined petroleum also from India, especially after their economic relationship with Russia came to an end.
See, the interesting things that we're looking at is like importing wine and liquor from UK. I mean, those are premium goods that we're importing, and they want to import basic goods from India.
Let's have a look at the U.S. Market right now. The Nasdaq Composite and the S&P 500 closed on a higher note yesterday, propelled by tech-related momentum stocks taking the lead. This surge was fueled by renewed optimism regarding inflation, spurred by recent economic data. The S&P 500 gained 0.74%, and the Nasdaq Composite added 1.68%. The Dow Jones Industrial Average fell 0.01%. Seeing the gains in the stock market indices in the U.S., S&P 500, Nasdaq Composite Index, even though the Dow only fell marginally, our markets, in fact, fell. The FII, FPIs were the net sellers in the market. So what's your take as far as the U.S. market is concerned? Some of the bellwether stocks like Tesla are facing stiff competition from Chinese manufacturers like BYD or Xiaomi. So how do you see the top companies in the U.S. right now when it comes to valuations?
So Arjun, what happened was in the last 3-4 months when the U.S. markets were hitting all-time highs, there was a set of 7 stocks called the Magnificent 7, which were leading the gains, you know, in the U.S. markets. Lately, what we have seen is that the rally in USA has become more broad-based. The Magnificent 7, so to say, the Apples, Amazon, Tesla, these stocks are not doing so well. Nvidia, of course, has been on a roll. So clearly, the rally within the U.S. stocks has been broad-based. And I hope that happens to most stocks across the world. Of course, India will benefit from fund flows which come from foreign investors in India.
Well, let's have a look at macroeconomic data of particular importance when it comes to India that has just come out now after market hours. IIP, India's industrial production grew 5.7% in February 2024, according to official data released on Friday. The factory output measured in terms of the index of industrial production witnessed a growth of 6% in February 2023. The India's IIP grew by 5.7% in February 2024, an official statement said. We saw the PMI for manufacturing coming out at 60, which is at least 10% higher than what's expected. If it's 50, it's very good. If it's 60, it's exceptional. So do you see this trend continuing, and how important is a share of manufacturing now as part of our GDP?
So two things. Like you mentioned, India continues to be a bright star in the international space in a sense that the economic growth is very strong. I think manufacturing now, the government policy is emphasizing jobs creation through growth in manufacturing sector, and therefore these figures become very important for us. The whole gamut of policies by government to push manufacturing in India, we've seen Apple growing and inviting electric vehicle manufacturers to India through PLI. I think all those policies are now coming to a maturity.
17% of GDP right now?
Yes, and but we expect it to go to 30-32% if we really want to make a difference.
Puneet, lekin ye jo agar audyogik utpadan ka ki jo dar agar badhti hai, to ye अर्थव्यवस्था के लिए कितना उत्साहजनक संकेत है?
देखिए, बहुत बड़ी इसका कंट्रीब्यूशन रहता है मैन्युफैक्चरिंग में. जैसे अर्जुन ने कहा, करीब 20% उसका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, एप्पल की अगर बात करें तो वो 5 लाख वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो जॉब्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खासतौर पे ये माना जाता है कि बड़े पैमाने पे आपको औद्योगिकीकरण करना है, और क्योंकि उसी के पैमाने पे ही आपके पास रोजगार का सृजन होगा. तो ये आंकड़े हमारे लिए कितनी उम्मीदें जगाते हैं?
बहुत अच्छी. मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, पर्टिकुलर पीएलआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इसका असर आप अगले 5 वर्षों में देखेंगे और भारत एक बड़ी और मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है.
Moving on to more news, India's retail inflation eased to 4.85% on an annual basis in March as against 5.09% in the previous month. The inflation is slowly moving to RBI's comfort level of 4%, while CPI urban inflation came in at 4.14%, CPI rural inflation was at 5.45%. The Consumer Food Price Index, CFPI inflation, was reported at 8.52% versus 8.66% in February. Inflation has been making news globally, not just in India for that matter. How important is a drop in CPI, even though it is by about 24 basis points? How important is this figure?
No, directionally it is very important. And considering the fact that in USA we have seen inflation inching higher, and across the world inflation is once again rearing its head. But fortunately in India, inflation is lower and largely driven by food prices. See, because we have such a large population which depends on food and the goods of immediate consumption. So I think drop in food inflation and overall inflation is good news for us. And of course, it will pave the way for RBI to cut rates, I think, in another couple of months.
Puneet, Reserve Bank ka bhi jo anuman hai, वो उसके हिसाब से ही जो मुद्रास्फीति है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. और जैसा कि आपने कहा कि जब खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य महंगाई दर है, वो अगर उसमें गिरावट आती है, हालांकि इसमें थोड़ी सी गिरावट है, 8.7% के आसपास से तकरीबन 8.5% तक आई है, थोड़ा सा ही गिरावट है, लेकिन कहीं ना कहीं, और अभी का जो मौसम का भी जो समर्थन रहने वाला है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि मानसून के मौसम में खाद्य मुद्रास्फीति स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है, एक इसके साथ साथ जो शहरी महंगाई दर है वो तो तकरीबन 4.14% है, लेकिन जो ग्रामीण महंगाई दर है वो 5.45% है. क्या ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से मांग बढ़ रही है और वहां की जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये कितना स्वस्थ संकेत है?
देखिए, बिल्कुल, नॉर्मली अगर रूरल इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसके लिए चिंताएं हो सकती है, लेकिन मुझे एक अच्छा संकेत लगता है, क्योंकि पिछले दिनों अगर हम इकोनॉमी की जो डेटा है उसको देखें तो रूरल डिमांड थोड़ी स्लो थी, और जैसे अब हम देख रहे हैं कि स्लाइटली इन्फ्लेशन वहां बढ़ता है तो सप्लाई भी बेहतर होती है. तो मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है, और एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो इकोनॉमी में होनी चाहिए उसकी मुझे उम्मीद इससे जगती है. आरबीआई डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है. तो रूरल इन्फ्लेशन से मुछे कोई बहुत चिंता नहीं है, बल्कि मैं आपको उसका सिल्वर लाइनिंग उसकी हो सकती है.
तो क्या ये माना जाए कि जो जून में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी वहां पे इन सारे आंकड़ों से हम ब्याज दरों में कुछ बदलाव की उम्मीदें करें?
अमित, मुझे अभी लगता है जून में तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन पर जब तक फर्म ग्रिप नहीं होगी आरबीआई की, तब तक वो ये रिस्क नहीं लेंगे. पर आने वाले समय में इस वर्ष मुझे लगता है कि तो इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं.
जी, कुछ और अच्छी खबर जी, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 98 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 648 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मुद्रा भंडार में 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई थी और यह 645 अरब 60 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा था। रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़कर 54 करोड़ 90 लाख डॉलर से बढ़कर 571 अरब 17 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है और इस दौरान स्वर्ण भंडार भी 2 अरब 40 करोड़ डॉलर से बढ़कर 54 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा। ये कितना स्वस्थ संकेत है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार एक जमाना वो था कि जब फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बहुत सारी चिंताएं थी, लेकिन आज अपने ऐतिहासिक स्तर पर या हर दिन नया कीर्तिमान बना रहा है, ये कितना स्वस्थ संकेत भी है और क्या अर्थव्यवस्था के लिए इसका लगातार बढ़ना कुछ चिंता भी जगा सकता है।
नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसके जो फायदे हैं बहुत हैं, वो क्योंकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी है और भारत में सुखद अनुभव है कि ये बढ़ा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और रिकॉर्ड स्तर पर है, तो मुझे लगता है इससे हमें काफी फायदा होगा। करेंसी जो है आपकी रुपया डॉलर करेंसी है वो स्टेबलाइज होगी,
लेकिन अभी भी रुपया जो डॉलर के मुकाबले है वो एक लेवल के आसपास ही, तकरीबन 84 रुपये के आसपास ही।
देखिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि वो स्टेबल एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड करे, फ्रीली मूव करे, लेकिन वो नैरो रेंज में रहे।
निर्यात
और आयात दोनों का ही इस पर असर बहुत गहरा असर पड़ता है।
Well, let's have a look at the crude oil market now. Internationally, oil prices rose today as heightened tensions in the West Asia raise a risk of supply disruptions from the oil-producing region. Brent crude oil futures was 1% higher at $90.62, whereas WTI was also 1.14% up at $85.99 when reports last came. And how concerned are you with the global crude prices going up, even though there are more nations right now who are in the pool to ensure there is supply side economics when it comes to the supply of oil?
That is true, Arjun, but the truth is that gold oil prices going higher is a major burden on India, on the taxpayers and consumers. So I think this really becomes the key factor for us in terms of inflation and consumption.
Abhi humne mudrasfiti ki baat ki thi, mehngai dar mein kya ye jo tel ki badhti kimatein hain, ये कितनी चिंताजनक खबर हो सकती है?
ये बहुत मेजर इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के हर एक जो कॉर्नर है उसको अफेक्ट करती है। तो ऑयल, क्योंकि हम सारा इम्पोर्ट करते हैं, 90% ज्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए एक मेजर एक्सपेंस है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना 996 रुपये बढ़कर 72,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 1,383 रुपये के उछाल से 84,230 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $2,410 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी मजबूती से $29.06 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। शायद सोने और चांदी ने इतनी चमक नहीं जगाई थी जितना सेंसेक्स जगा रहा था, या दोनों में होड़ लगी है कि मैं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ूंगा। पुनीत, सोने के प्रति ललक जो है भारतीयों में ही नहीं विश्वभर में लोगों की स्वाभाविक रहती है, और अगर $2,400 हम पिछले कुछ सप्ताह पहले बात कर रहे थे तकरीबन $2,000 के आसपास था वैश्विक स्तर पर, और चांदी $22-23 के अगर ऊपर पहुंचती थी तो हमको लगता था एक बेहतर स्तर है, लेकिन $30 के आसपास आना ये कितनी उम्मीदें जगा रहा है, और सोने और चांदी की ये जो तेजी है ये कितनी दूर तक जाती हुई नजर आती है?
देखिए, जबकि इन्वेस्टर्स के लिए, जो बुलियन में इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इकोनॉमिस्ट के लिए खबर उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर का सीधा ताल्लुक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से रहता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका होती है तो वो गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा तेजी देखते हैं। हम देख रहे हैं कि जो तेजी आई है ये चाइना में बहुत गोल्ड की बाइंग हुई है काफी बड़े पैमाने पर, दूसरे जो बड़े सेंट्रल बैंक वो भी गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी कुछ हद तक वो चिंतित हैं और वो रिजर्व्स अपने गोल्ड की फॉर्म में बढ़ा रहे हैं, डॉलर में नहीं बढ़ा रहे हैं, गोल्ड की फॉर्म में
डॉलर इंडेक्स भी जबकि ऊपर
है, जब डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है उसके बावजूद वो गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के मद्देनजर ये उतनी अच्छी चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव असर आ सकता है फॉर इकोनॉमी, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर के जो इन्वेस्टर्स हैं मुझे लगता है उनके लिए काफी अभी आने वाला समय भी अच्छा रहेगा।
अभी अभी इसमें और कितनी तेजी की उम्मीदें आप अनुमान जगाते हैं?
देखिए मुझे लगता है कि जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं ये खत्म नहीं होती तब तक गोल्ड और सिल्वर में तेजी का दौर रह सकता है।
पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Benchmark indices tank over 1%. Sensex plunges 793 points. Nifty ends below 22,550. Retail inflation eases to 4.85% in March. Food inflation drops to 8.52%. India's foreign exchange reserves rise to for a seventh straight week, jump $2.3 billion to hit a fresh peak of $648.56 billion. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.